हरे कृष्णा। 20 सितंबर गुरुवार का दिन। प्रश्न यह है कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि जो लोग इस जीवन में अपना भक्ति का कार्य पूर्ण नहीं कर सकते हैं, अपूरा रह जाता है उनका कार्य, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं सूचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट बिजायते, ऐसे लोगों को मैं या तो अमीर घर में, या तो सुंदर शरीर में, या तो भक्त के घर में जन्म देता हूँ, ताकि वो अपना अगला जीवन जो है वो वहीं से आगे अपना शुरू कर सकते हैं। वो उसके लिए अनुकूल वातावरण वाले घर में वो उनको भेज देंगे। लेकिन किस किस को अमीर के घर में भेजेंगे, किस किस को बहुत ज्ञानी लोगों के घर में भेजेंगे, किसी किसी को बहुत रूपवान लोगों के घर में भेजेंगे, या किसी किसी को वैष्णवों के घर में जन्म देंगे, ये एक भगवान ने कहा है। मतलब जो भक्त है लेकिन पूरा नहीं करे अपना काम, वो अगले जन्म में इस गति में जाएंगे, ऐसे बताया। और भागवत में कुंती देवी कह रही है, जन्म ऐश्वर्य सुति श्रीभिल, जन्म यानी जिसका जन्म बहुत ऊंचा है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, ऐसा होता ना, जन्म से ही वो बड़ा होता है बहुत आदमी, तो जन्म से ही श्रेष्ठ कुल में यानी ब्राह्मण कुल में, अनुकूल कुल में जहाँ भक्ति हो रही है, ऐश्वर्य यानी कि धन संपत्ति से समृद्ध घर में, सब कुछ है उसके अंदर, भक्ति के लिए कोई कमी नहीं है, आप कैसे भक्ति कर सकते हो। श्रुति यानी ज्ञान, बहुत ज्ञान, और श्री यानी सौंदर्य और बहुत सारी चीज़ें, या प्रसिद्धि कह सकते हैं आप, या तो ऐसे ही जो अट्रैक्टिव चीज़ें, मतलब प्रतिष्ठा, मान, पूजा, सम्मान, उच्च जन्म, विद्या, सौंदर्य, ऐश्वर्य, अच्छा जन्म। और कुंती देवी कह रही है कि ये सब चीज़ें ना भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है, और जिसके पास ये रहती है वो दिल से भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान उनको उसमें क्यों भेज रहे हैं? भगवान जो भक्ति कर रहा है, अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो उसको ऐसे घर में भेजना चाहिए वो शोर शॉट भक्ति करेगा। लेकिन कुंती कह रहे हैं कि जिसके पास जन्म ऊंचा है, कुल ऊंचा है, ज्ञान बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, वो बोलते हैं दिल से भक्ति नहीं कर सकते हो, तो गड़बड़ हो गया ना उसके अंदर। तो ऐसा है कि ये सब चेतना के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अगर भक्ति पूरा नहीं कर पाया, लेकिन क्यों नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि उसको थोड़ा सा ब्यूटी का अट्रैक्शन था, तो वो फिर ब्यूटीफुल घर में जाएगा, भक्ति भी है उसकी लेकिन ब्यूटीफुल घर में जाएगा। या किसी को लगा कि बहुत पैसा होना चाहिए, क्या भक्ति करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो दिल से भक्ति कर सकते हैं, क्या अभी ये नहीं है भाई, 108 के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, मुझे 1008 ऑफरिंग देना था लेकिन पैसे नहीं है, तो मैं 108 ही कर दिया, काश ऐसा इतना पैसा होता कि ये 2008 भी ऑफरिंग कर सकता था मैं जेब से मेरे, है ना, देखो तो इतने भक्त लोग हैं वो यात्रा में आ सकते नहीं है, मैं जो इतना पैसा होता मैं 10 लोगों को स्पॉन्सर करके लेके जाता अगर पैसा होता मेरे पास। दिल से अगर कोई सोच रहा है तो फिर वो अमीर घर में जन्म लेगा, और ये सब अपनी बची हुई जो इच्छा है ना वो पूरी करेगा। और कोई बोलेगा कि क्या है अभी, इतना बुद्धि भी भगवान ने दिया नहीं, 8वीं पास हूँ, अगर अच्छी बुद्धि होती तो मैं शास्त्र पढ़ लेता पूरा, तो फिर वो बुद्धिमान के घर में जन्म लेगा, विद्वानों के घर में, और जन्म से ही विद्वान बनेगा वो। और कोई बोलेगा क्या, अरे काला रंग का पिताजी माताजी था तो मैं भी काला हो गया अभी, मुझे अभी अच्छा सौंदर्यवती माता होती, अच्छी से अमुची आई ऐसे थी तो मैं भी अच्छा दिखता था, तो फिर वो सुंदर दिखने वाले घर में जन्म लेगा। लेकिन अगर वो उसका माइंड कृष्ण पे फिक्स है तो ही वो तर पाएगा, और उसका माइंड ऐसा डिवाइड हो गया है ना तो फिर ये सारी चीज़ें नुकसान करेगी उसका। तो कुंती माता जी बोल रही है वो सही है, लेकिन कृष्ण भगवान भी आपके मिक्स्ड इच्छाओं को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं मरूंगा लेकिन अगला जन्म लेना ही पड़ेगा ना, वो तो कीट जन्म, क्या ठाकुर भक्तों ने क्या बोल रहे हो कि कोई जो भी वो वर्ड होगा उसका अर्थ ये है कि ठाकुर भक्तों ने बोल रहे हैं कि अगर मुझे समझो जन्म लेना ही है तो एक बात ध्यान रखना, मुझे ना वैष्णव के स्टूल में कीड़ा होके चलेगा जन्म, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म जन्म ना ही मानी, लेकिन आपसे विमुख होकर ब्रह्मा बनकर भी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। ऐसा आपका माइंड क्लियर रहेगा ना तो आप वैष्णव के घर में पहुंचोगे। तो माइंड अगर मिक्स रहेगा ना कि अच्छा होगा अगर सुंदर घर में जन्म लूंगा, तो फिर वो मिक्सचर मिलेगा आपको, सौंदर्य मिलेगा, धन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन ठाकुर भक्ति ने उसका गाइडेंस दिया है हमको, ऑलरेडी बोल रहे हैं भगवान को कि मुझे आना तो नहीं है वापस, लेकिन अगर आपके हिसाब से गणित से मुझे आना ही पड़ेगा तो मुझे आप वैष्णव के घर में विष्ठा के अंदर कीड़े की तरह जन्म देना, क्योंकि वैष्णव के घर में कीड़ा भी बनूंगा तो भी मुझे भगवान का नाम सुनना ही पड़ेगा। और बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मानी, मतलब ब्रह्मा भी बनूंगा और बहिर्मुख यानी भगवान के, बहिर्मुख यानी भगवान के अनुकूल नहीं होऊंगा, ब्रह्मा बनूंगा तो भी मुझे नहीं चाहिए वो जन्म। तो फिर वो वैष्णव के जन्म में घर में जन्म लेगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसको न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामई, ये उसका माइंड है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ उसका। तो फिर वो ऐसे घर में जाएगा जहाँ पर धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामई ऐसा वातावरण रहेगा, मतलब ब्रजवासियों का घर, उसमें कोई सुंदर नहीं होता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, धनवान भी नहीं होता है, अच्छा कुल में बड़ा बड़ा जन्म भी नहीं होता है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जिसमें गर्व किया जाए। हम लोग गर्व किस पे रहता है, मैं बोलूँगा मैं गौड़ सरस्वत ब्राह्मण हूँ ये मेरा गर्व है, आप बोलेंगे मैं गौड़ नहीं तो क्या हुआ, मैंने 10 PhD किया है, भक्ति वैभव किया है मैंने, सब श्लोक ऐसे खाड़ खाड़ बोलते रहता हूँ, तो ये आपका गर्व हो गया। और आपका गर्व होगा कि मेरी माँ भी बहुत सुंदर थी और मैं भी बहुत सुंदर हूँ और इतना सौंदर्य है कि लोग भाव विभोर हो जाते मुझे देखकर, वो आपका गर्व होगा, है ना। कोई बोलेगा मैं इतना धनवान हूँ कि मुझे पढ़ने में कोई जरूरत नहीं है, आप लोग MBBS करते रहो, मेरे को क्या जरूरत है MBBS करने की, है ना, ये बिना करते हुए मैं करोड़पति या अब्जोपति हो गया हूँ। तो वो उसी पर उसका जीवन चलता है, गर्व उसके ऊपर, उसको कोई जरूरत ही नहीं किस चीज़ की, ना पढ़ने की जरूरत है, ना कुल की जरूरत है, ना कुछ ज्ञान की जरूरत है उसको, वो सब कुछ है ऑलरेडी उसके पास, ऐसा है। अभी ये कुंती का मैं आपको जवाब देता हूँ, तो कुंती, हाँ तो कुंती माता जी क्या बोल रही है कि ये चीज़ें बहुत डेंजरस चीज़ें हैं, अगर ठाकुर भक्ति विनोद जैसा हमारा माइंड नहीं है तो फिर ये चीज़ें बहुत डेंजरस है। जिसका कुल हाई है ना तो शुरू से गर्व में रहेगा ना, हम ये नहीं करेंगे, मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ, वैसा ब्राह्मण हूँ, ये चित्पावन ब्राह्मण हूँ, और तो फिर वो अहम से वजह से, क्योंकि ये चार चीज़ें हैं ना जो अहम उत्पन्न करती है, जन्म, उच्च जन्म, उच्च कुल, विद्या, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ये अपने आप ही घमंड उत्पन्न करती है, और घमंड के जगह पर भक्ति नहीं हो सकती। हाँ हाँ, घमंड जहाँ होगा किसी भी किले होगा, एकदम दिखने में कुरूप हो आप लेकिन आपके पास 10 डिग्रियाँ हैं तो उसका भी एक घमंड होता है, तो क्या हुआ मैं कुरूप हुआ, तो एकदम आप काले कलोटे हो लेकिन आप चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, लोग सलाम करेंगे आपको क्योंकि आपका पावर ही इतना है। हो सकता है आप धन से भी नहीं बड़े होंगे या आप ऐश्वर्य से बड़े नहीं होंगे या सुंदरता में बड़े नहीं होंगे, लेकिन आपकी प्रभाव है ना, पावर, अथॉरिटी आपकी इतनी पावरफुल है कि सब कुछ ना होते हुए भी आप लोग आपका सम्मान करेंगे। तो वो सम्मान की और गर्व की अवस्था में भक्ति जो है वो गहराई तक अपना मूल नहीं पकड़ सकती है, कमजोर नींव रहेगी उसकी। तो कुंती ने सावधान किया है, त्वाम अकिंचन गोचरम, आप किसके बनते हो, धनवान लोगों के नहीं बनते आप, ऐश्वर्य संपन्न लोगों के नहीं बनते आप, सुंदर स्त्रियों के और सुंदर पुरुषों के नहीं बनते आप उनके बनते हैं जो अकिंचन है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा आपको लगता है लेकिन उसका रियल मीनिंग ये नहीं है, उसका रियल मीनिंग ये है कि सब कुछ होते हुए जो अपने आप को अकिंचन मानता है उसका मैं बनता हूँ, वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। तो जरूरी नहीं कि आपको काला कलोटाई होना है या अनपढ़ अंगूठा छापी होना है या गरीबी होना है, ये जरूरी नहीं है। ये सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर समझ सकते हो। पांडव लोग एक बार कंगाल थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, नंगे पैर घूमते थे, 1 रुपये फूटी कौड़ी भी नहीं थी उनके पास, और एक समय आ गया कि वो विश्व के राजा बन गए, पूरा ऐश्वर्य आ गया उनके पास, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो उतनी ही आत्मीयता के साथ भगवान पर निर्भर थे। इसका प्रूफ क्या है? आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, उनको थोड़ा गर्व तो हो गया ही रहेगा ना राजा होने के बाद में, इतना तो दिन के बाद राज्य मिला तो थोड़ा बहुत तो उन्होंने एंजॉयमेंट किया ही होगा, इतने दिनों के बाद मिला, इतना संघर्ष के बाद मिला, इतना परिश्रम के बाद प्राप्त हुआ, तो फिर वो उन्होंने तो अपने आप को चिपका लिया होगा ना उसको, उसका प्रूफ क्या ऐसा नहीं करके। जैसे ही कृष्ण अंतर्धान हो गए, वो जैसे हम लोग ना पुराने कपड़े निकालते ना ऐसे बाथरूम फेंकते ना, वैसा सब कुछ फेंक के वो भगवान के पीछे भाग के चले गए, तत् एक क्षण भी रुके नहीं वहां पर। तो जब गरीब थे तभी भगवान ही उनकी दौलत थी, जब अमीर थे तभी भगवान ही उनकी दौलत थी, उनको दुनियादारी की दौलत में कोई आसक्ति नहीं थी, ये उसका प्रूफ है। अगर वो नहीं जाते, अगर बोलते अरे भैया, बड़े भैया को बोलते भैया मत जाओ, अभी इतना दिन के बाद में राजा बने हैं तो अभी तुरंत छोड़ के कैसे जाएंगे, दुनिया का भी तो काम करना है ना, दुनिया का कल्याण भी करना है राजा बनने के बाद में। नहीं, उनका हृदय कृष्ण में इतना स्थिर था कि उनको दुनिया का ऐश्वर्य और प्रभाव और पद अधिकार आकर्षित नहीं कर पाया, वो तो ऑन द स्पॉट छोड़ के चले गए। ये प्रूफ है उनके विरक्ति का, प्रूफ नहीं भगवान के ऊपर आसक्ति का प्रूफ है ये। उधर भी जब गरीब थे तभी आसक्ति भगवान की थी, धन दौलत ऐश्वर्य अधिकार शक्ति प्रभाव प्राप्त तो हुआ, तभी भी उनका मन और आसक्ति भगवान पर ही थी, इसलिए भगवान उनके नौकर बन के रहे, ऐसे फुकट में नहीं रहे, भगवान सारथी बने उसके, जंगल में गए उनको मिलने के लिए, किधर किधर गए वो, उधर सभा में प्रकट हो गए वस्त्र बन के, क्योंकि वो सही में त्वाम अकिंचन गोचरम थे। तो अकिंचन होना मतलब गरीब होना नहीं, सब कुछ होते हुए भगवान पर ही अपने आप को निर्भर समझना, सब कुछ होते हुए भी भगवान के सामने असहाय समझना अपने आप को, और सहायता की जरूरत समझना, ये जानते हुए कि ये जो कुछ मेरे पास अभी है, धन जन्म उच्च कुल का जन्म है, उच्च कुल का ऐश्वर्य है, हाँ ज्ञान है, सौंदर्य है, ये सब कुछ मेरा कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते वास्तव में, ये मेरा सहारा नहीं है, ये मेरी डूबती नैया को बचाने वाली चीजें नहीं है। ये उसको पता होता है कि मेरा कुल मुझे भगवान के पास नहीं पहुंचाएगा, मैं इतना सारा ज्ञान मैंने अर्जन करके रखा हुआ है वो मुझे भगवान के पास नहीं पहुंचाएगा, इतना ऐश्वर्य है, इतना सौंदर्य है, इसमें से एक भी वस्तु मुझे भगवान के पास नहीं पहुंचा सकती है, ये विश्वास जिसको होता है वही त्वाम अकिंचन गोचरम हो सकता है। और उसके आगे संतों ने कहा है कि इतना सब होने पर भी जो नम्रता से भक्तों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है और भक्तों की सेवा करता है, वो गौरांग महाप्रभु की कृपा ही मानी जाती है। राधा रानी और गौरांग महाप्रभु, इनकी कृपा के बिना सब कुछ होने पर भी नम्रता बनाए रखना इम्पॉसिबल है, थोड़ा गर्व तो होगा ही उसको, लेकिन सारा चीज होने पर भी जो नम्र रहता है वो गौरांग महाप्रभु और राधा रानी कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो वो प्रूफ है कि ये राधा रानी कृपा प्राप्त है, इसलिए वो इतना सब होने पर भी इतना दीन बनकर रह सकता है भक्तों के सामने। जैसे हमारे कृष्णजन प्रभु हैं, है ना, कैसे हैं वो अम्बरीश प्रभु हैं, बहुत धन दौलत है उनके पास में, लेकिन कैसे रहते हैं वो भक्तों के सामने, कैसे उनको अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कैसा उनका भाव है, देखो बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि ना और एक चीज़ है, ये जो है ना पावर, ऐसा कहा गया है कि पावर करप्ट्स, आई मीन इट करप्ट्स एब्सोल्युटली, ऐसा एक श्लोक है, मतलब एक वाक् प्रचार है इंग्लिश में, कि पावर जो है ना, पावर यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अधिकार प्रभाव होता है ना ऐसा, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस दुनिया का, या मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, या मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर हूँ, एक ऐसा एक पद का एक शक्ति होता है ना, आदमी होगा 4 फुटी लेकिन उसका पद की शक्ति इतनी होती है कि वो थे ना हमारे शिवसेना के बाल ठाकरे, इतने से थे वो, बट क्या पावर थी उनके अंदर, ऐसा उंगली भी हिलाया ना तो पूरा महाराष्ट्र हिलता था उनका, इतनी पावर थी उनके अंदर। तो वो पावर जो है ना वो आदमी को ना दिमाग खराब कर देती, किसी का बात आप सही नहीं कर सकते, इतनी पावर होने के बाद में वो पावर दिमाग में घुस जाती है और फिर बाद में आदमी पागल हो जाता है पावर, पावर की वजह से, पावर ही उसको पूरा रोगी बना देती है पूरा, और वो कुछ 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 मूर्ख जैसे काम करते रहता है बिकॉज ऑफ पावर। पावर उसको बोलते ना मद मस्त कर देती है, मद से वो पूरा पागल हो जाता है। वैसा ही सौंदर्य का भी ऐसा ही है, जब बहुत सौंदर्य है तो वो उसमें इतना फंसा रहेगा कि उसको कुछ दुनिया में देखेगा नहीं, मेरा सौंदर्य मेरा धन दौलत लगेगा उसको। जैसा वो था एक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर करके एक आदमी था, वो आज तक के हिस्ट्री में मतलब अभी रिसेंट हिस्ट्री में उसके इतना बॉडी बिल्डर कोई हुआ नहीं है पूरे विश्व में। वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रहा, बीच में उसने गैप लिया 8 साल, पार्ट ही नहीं लिया कंपटीशन में। 8 साल के बाद वापस को दिल आया, वापस कंपटीशन में आया, वापस वो चैंपियन हो गया। 8 साल नहीं था तभी और कोई चैंपियन बना, लेकिन वो ऐसा था वो बॉडी बिल्डर। बाद में वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। तो उसके इंटरव्यू पढ़ेंगे ना तो दैट माई बॉडी इज एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत बचपन में कॉलेज में बहुत था बॉडी बिल्डिंग के पढ़ता था उनका इंटरव्यूज वगैरह। वो कहते हैं माई बॉडी इज एवरीथिंग फॉर मी एंड एनीथिंग फॉर बॉडी, मेरे शरीर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी बॉडी मेरी वेल्थ है। और आज के तारीख में उसकी बॉडी जो है ना वो ऐसी हो गई है कि वो खुद ही रोते रहता है, क्योंकि सारा स्टीरोइड लेके ये करके उसका बॉडी ऐसा था, किसी ने उनको बताया नहीं कि खराब खराब होता है वगैरह। तो हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर बोमी बोमी जोसेफ करके आया था, उससे उसकी मुलाकात भी हुई तो उसने कहा कि नोबडी टोल्ड अस कि यू शुड नॉट टेक स्टीरोइड्स। और आज उसका बॉडी देखेंगे तो आप हंसेंगे उसको देख के, ऐसा फ्लैट हो गया वो। मतलब क्या, सब कुछ नकली और सब कुछ नश्वर, जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं रहता है, खाली दिखता है खाली बस। वो आपको ऐसा हवा चढ़ाता है, वाह 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 वाह, सब ताली बजा रहे, वाह वाह वाह। और एक दिन जब ऐसा होता है तब तो वो किधर भी उसका नाम नहीं रहता है, ना पेपर में आता है ना कुछ नहीं होता है। शूमाकर, पता है शूमाकर कौन है? वर्ल्ड का नंबर वॉल्यूम क्या सम वन रेसर था, वो कार ड्राइवर था, वो कार रेसर, फॉर्मूला वन बोलते हैं उसको कंपटीशन, वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो फॉर्मूला वन का वो कई साल तक चैंपियन रहा वो। बट इतना करोड़ों रुपया कमा के इतना यश प्राप्त करके एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ घूमने चला गया ना तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सर पे मार लगा तो वो पैरलाइज हो गया। तो जितनी दौलत उसने कमाई थी वो सारी उसकी वाइफ ने बेच बेच के उसका इलाज किया। आज भी वो बिस्तर पे है और वो एकदम कंगाल हो गए हैं, कर्जबाजारी हो गए। वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कर्जबाजारी को, लोन हो गया उसके ऊपर, बहुत ऋणको हो गया वो, इतने कर्ज हो गए उसके ऊपर आज की तारीख में। उसकी वाइफ अभी चैरिटी मांग रही है सब लोगों से जाके, मेरा पति शूमाकर था इतना फेमस था वो, उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, सब कुछ घर बार बंगला प्रॉपर्टी जमीन डॉलर सब बेच दिया उन्होंने इसका इलाज के, अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा है, पड़ा है बिस्तर के अंदर, बात भी नहीं कर सकता है। मोहम्मद अली हमारे बचपन का वो चैंपियन था बॉक्सिंग का, उसका एक ऐसा ख्याति था, वो सही था, मतलब वो ना जब बॉक्सिंग करता था ना उसका हाथ भी दिखता नहीं था किसी को, इतना फास्ट करता था बॉक्सिंग में। पंखा लगाया ना, जब ये पंखा लगाया कहाँ दिखते पत्ते उसके, आपको एक खाली सर्कल दिख रहा है लेकिन है 3 पत्ते, लेकिन वो 3 पत्ते इतने फास्ट घूम रहे हैं कि आपको खाली सर्कल दिखाई पड़ रहा है ना, आपके आंखों में पकड़ में नहीं आ रहे वो 3 पत्ते किधर है। अभी देखो कहाँ दिखते 3 पत्ते, पीछे भी देख रहे हैं उसके क्या है, सब देख रहे हैं आप उसको। तो इतना स्पीड में वो बॉक्सिंग करता था कि उसका हाथ कब आगे और कुछ आगे दिखाई पड़ जाता था कैसे। वो आदमी आज अभी गुजर गया वो, लेकिन जब वो बाद में ना उसको पार्किंसन डिसीज हो गया, पार्किंसन डिसीज, तो वो ऐसा एक ग्लास भी उठा के पानी नहीं पी सकता है, इतना वो बेकार हो गया। उसका और एक चैलेंज था कि मैं बटन बंद करूंगा और बटन बंद करके लाइट बुझने के पहले मैं बिस्तर में सो जाऊंगा, इतना गति था उसके अंदर। अभी आप बोलेंगे बटन बंद किया, बंद किया, इसके बीच में समय है, ऐसा मत समझना कि वो एक साथ में हो रहा है, कुछ मिली सेकेंड का समय है बीच में, उतने मिली सेकेंड में वो अपने आप को बिस्तर पे डालता था, इतना स्पीड था उसके अंदर। किधर गया सब स्पीड? एक तरह से लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो कुत्ते की मौत मरा वो। माइकल जैक्सन, सुना आपने नाम माइकल, तुमने? इतना बड़ा गायक था वो, उसने एक बार अंधेरे में प्रोग्राम किया था, तो अंधेरी प्रोग्राम क्या था ना, तो शिवसेना ने उसको स्पॉन्सर किया था वगैरह वगैरह, बहुत पॉलिटिकली, बहुत पैसा कमाने के लिए। तो अंधेरी के क्रीड़ा संकुल में, यहाँ पर शायद लाखों लोग बैठ सकते हैं एक साथ में, वहाँ पर उसने अपना प्रोग्राम अरेंज किया था। तो प्रोग्राम में जब आया ना, एंट्री मारा ना, तो सब लड़कियाँ एकदम पागल सबके उसके लिए एकदम। तो वैसा सामने आया, स्टेज के कॉर्नर पे आया और झुक के उसने सबको ऐसा हाथ लगाया पर सबको, तो आप भी ऐसा हाथ हाथ सब सबसे मिला रहे ना ऐसे 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 करके, कई सैकड़ों लोगों को हाथ मिलाया उसने। तो किसी को यहाँ लगा, किसी को यहाँ लगा, किसी को लगा, सबको ऐसा। हम लोग कैसे ना बड़े बात तो हस्ती को चाहते ना हाथ लगा चाहते ना, बड़े आदमी का हाथ सेकंड करना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फील इट। तो वैसे उसने जानबूझ के आकर ऐसे सब लोगों को ऐसे हाथ लगाया, तो कई लोगों ने ना 7 दिन तक हाथ नहीं धोया अपना, तो माइकल जैक्सन ने मुझे हाथ लगाया। इतना फेमस था वो, धन दौलत और क्या प्रसिद्धि, नाम शोहरत इतना प्राप्त हुआ उसको कि वो एनी बड़ी। और उसने मालूम है अपने शरीर पर इतना प्लास्टिक सर्जरी किया, वो ब्लैक था, ब्लैक अमेरिकन था, तो उसने ना अपना शरीर का सारा अंग चेंज किया उसने, नाक को स्ट्रेट किया और सारा चेहरा गोरा कर दिया उसने, पूरा गोरे लोगों का स्किन लगा के एवरीथिंग चेंज किया उसने, पूरा कंप्लीट चेंज किया, बाल चेंज किए, शरीर का सब कुछ अपने अपने हिस्से चेंज कर दिए। इतना करोड़ों रुपये खर्च करके अपना शरीर चेंज कर दिया उसने। लेकिन और उसके पास ना 75 एकर्स का एक आइलैंड था खुद का, और एक कुछ अब्जो रुपए का उसका एक बोट था उसके पास। ऐसा आप विचार नहीं कर सकते कितना दौलत था उसके पास में, लेकिन एक भी फ्रेंड नहीं था उसके पास। वो सब लोग ऐसे ही हाथ लगाने के लिए हाले फ्रेंड है, कोई नहीं आया उसके लिए, एक भी दोस्त नहीं उसका। और फाइनली वो आइलैंड के अंदर सैकड़ों नौकर थे उसके, लेकिन अकेलेपन में सड़ते हुए मरा उस। और जो डॉक्टर को रखा था ना उसने, वो डिप्रेशन में था, बहुत सारी गोलियां चल रही थी, बहुत सारे ड्रग्स का उसको एडिक्शन था, और वो ऐसा ना कुछ 22 किलो का वजन हो गया उसका एंड में, इतना वो ऐसा भूत जैसा लग रहा था, पितर होता ना पितर पापी लोगों का, वैसा लग रहा था वो। तो फिर भी इतना दौलत था उसके नाम पे, तो डॉक्टर ने उसको ना ड्रग का ओवरडोज दे के ख़त्म कर दिया उसको आइलैंड के अंदर, पैसे के लिए। और क्या, अरे पैसे के लिए क्या क्या करते लोग। तो वो जो भूल भलैया था, इतना इतना नाम उसका, हाँ इतना नाम, इतनी इज्जत उसके लिए, किधर गया सब कुछ, वो सब ऐसा एक हवा का झोंका था, आया और गया, एक बादल था जो बना और फिर नष्ट हो गया। खाली बहुत सुंदर लग रहा था वो, जब सूरज की किरण उस पर पड़ी थी तो गोल्डन बॉर्डर आया था उसके ऊपर शाम के समय पे, उन्होंने फोटो भी निकाले थे। लेकिन सूरज गया तो बादल का बादल भी नहीं, उसका पानी भी नहीं और सूरज भी नहीं, कुछ भी खत्म सब कुछ। तो ऐसा है। और ये जिसको पता है कि आज मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन ये उसको पता है कि सब नश्वर है, कुछ मतलब नहीं इसका, वो भगवान की कृपा प्राप्त किया हुआ आदमी है। जिसको धन के बीच में पता है कि ये सब बेकार है, धन जाने के बाद तो आप सब लोग अच्छा शास्त्र बोलेंगे ना, अरे क्या सब कुछ नश्वर है, लेकिन जब था तभी नहीं बोलेंगे आप सब नश्वर है, तो एंजॉय करना कोशिश करेंगे। चलो भाई तो अभी एंजॉय करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे घूमो, अच्छी तरह से सब एंजॉय करो, तभी कोई सोचता नहीं है। जब जाएगा तो बड़ी फिलोसॉफी सुनाएंगे, गाने गाएंगे अच्छी तरह से, फिलोसॉफिकल गाने। कैसे भक्ति मिलेगी, ये क्या लिखा है कुंती ने, इतना ऐश्वर्य है तो इसको ऐश्वर्य में भक्ति बोलते ना, वो मूल ही पकड़ती नहीं है भक्ति, जमीन को पकड़ती नहीं है वो, उसका मूल ही नहीं बनता है पेड़ का। पेड़ का भी अच्छा होता है जब पहले उसका मूल जो है ना वो जमीन को पकड़ लेता है अच्छी तरह से, अच्छा बढ़ता है मूल और जमीन को पकड़ लेता है, फिर उसकी ऊपर वृद्धि होती है। कभी कभी बहुत देर तक वो पेड़ है ना ऊपर ही नहीं आता है, क्योंकि वो नीचे काम करते रहते हैं, वो अपना मूल स्प्रेड करके जमीन को अपना स्थान बना लेता है, फिर उसके बाद में वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये मूल ही बनता नहीं है जब तक ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता है, या ऐश्वर्य में विश्वास नष्ट नहीं होता है। ऐश्वर्य कुछ अच्छा बुरा चीज़ नहीं है, आपको अगर उस पर विश्वास है तो आप फंस गए, आपको सौंदर्य में बहुत विश्वास है तो आप फंस गए, अगर आपको धन दौलत में विश्वास है तो आप फंस गए, और बहुत ज्ञान में आपको विश्वास है तो फंस गए। अरे बोले ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है, ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान भी एक प्रकार की बहुत बड़ी माया है। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ पढ़ लिया है, मैं सब जानता हूँ, मैं विरक्त हूँ, मुझे दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक प्रकार का अहंकार होता है कि मुझे इतना ज्ञान है कि दुनिया के किसी पैसे में, सुंदरता में, स्त्री में, इसमें उसमें, अधिकार में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका अपने विरक्ति के अंदर ही मस्त रहता है, वो विरक्ति ही उसके लिए माया है पूरी, उसकी विरक्ति ही उसके लिए एक प्रकार का जंजाल है। तो वो भी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं होता है वो डूबते हुए व्यक्ति के ऊपर पहना हुआ मुकुट जैसा होता है। कैसे बताओ? डूबते हुए समुद्र में व्यक्ति के सर पे अगर बहुत भारी मुकुट होगा तो क्या करेगा वो? और फास्ट डुबाएगा उसको। अगर आप डूब रहे हो तो मुकुट फेंक दो निकाल के, कम से कम वजन तो कम हो जाएगा। तो ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं होता है वो डूबते हुए व्यक्ति के सर पे मुकुट जैसा होता है, वो आपको माया में बहुत जल्दी डुबा देता है। इसलिए ज्ञान का इस्तेमाल केवल विरक्ति के लिए नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में करना चाहिए। वो ज्ञान जो भगवान की सेवा में नहीं होता है वो एक बोझ है आपके ऊपर। इसलिए ज्ञान जैसे प्राप्त करते हैं तुरंत लोगों को बांटना चाहिए। आप आज ने कुछ नया सीखा, नया पढ़ा, तुरंत कोई किसी को ग्रुप को कथा में इधर उधर बता देना चाहिए उसको। अगर वो किसी को नहीं बता के अपने पास रखा ना आपने, तो आपको डुबा देगा वो। ज्ञान बोल रहा हूँ मैं, आत्मा का ज्ञान बता रहा हूँ। वो भी अगर आपने नहीं बताया किसी को, खुद के पास रखा, तो वही वो अन्न होता है ना, आप रखेंगे तो सड़ जाएगा ना वो अन्न, वैसे होता है। और वो अन्न अभी आपके पास में है, तुरंत बांट दिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। विरक्त हुआ, हाँ आसक्त हुआ विरक्ति से। हाँ मेरा गर्व यही है कि मैं विरक्त हूँ, मैं किसी औरत के हाथ का खाना नहीं खाता, मैं किसी औरत को देखता भी नहीं, मैं औरत के तो जूतों को भी देखता नहीं हूँ। ये मेरी यही मेरा गर्व है। अरे ठीक है, लेकिन ये आपको डुबा देगा पूरा। आपका आसक्ति, जीवन का लक्ष्य आसक्ति विरक्ति पर आसक्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है। और आपका आसक्ति, आप भगवत प्रेम के बिना भी विरक्त हो सकते हो। मायावादी लोग क्या करते हैं, पूरा विरक्त, पैसे भी छूते नहीं। हम लोग हमारे गुरुदेव रुपये को हाथ नहीं लगाते, यही उनका गर्व होता है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, आप मुझे 1 लाख देंगे, मैं पूछूंगा अगला लाख कभी दे रहे हो, व्हेन आर यू गिविंग द नेक्स्ट लाख ऑफ रुपीस। क्योंकि वो खुद के लिए यूज ही नहीं कर रहे उसको, तो लाख या करोड़ भी ले सकते हो, लाख क्या करोड़ भी ले सकते हैं आपसे। ये समझने वाली बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये, जीवन का लक्ष्य विरक्ति नहीं है। विरक्ति से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, धन से आप भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, ज्ञान से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, सुंदर रूप से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, उच्च कुल में जन्म देकर भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, अधिकार से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारी चीज़ उनकी दी हुई है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप सुंदर हो समझो, आपने उसके लिए क्या किया है? आपने आपने पिछले जन्म में कर्म किया होगा, लेकिन आज लगता है कि मेरा नाक है ना वो ऐसा क्यों है, थोड़ा पॉइंटेड होना चाहिए था, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, जो है वही है ना। हाँ, वो सब भगवान ने आपको दिया हुआ है, तो भगवान के दिए हुए चीज़ पर गर्व कैसे कर सकते हैं आप? अब आपको पता है कि ये सब तो उधार का धन है, उधार के धन में कौन ऐश करेगा क्या? उधार लेके घर बांध रहा है तो उसमें क्या, जब तक नहीं चुकाएगा उधार तब तक क्या गर्व करेगा? क्या गर्व करने की जैसी चीज़ है वो? सब तो उधारे का माल है। शादी में एकदम चकमक रहे आप जोरदार, लेकिन पता चला बाद में चला कि वो ड्रेस उधारी से लाया था, दुल्हन का ड्रेस उसका तो था ही नहीं, वो सब जेवर भी जो रेंट पे थे वो भी उधार पे लाए थे, सब भूल भले ही आया, कुछ है ही नहीं कुछ। बाल भी इतने लंबे और काले दिख रहे हैं, अरे वो तो विग लगाया था उसने पूरा। उसमें गर्व कैसे करेंगे आप? दुनिया आपको फोटो निकालेगी आपका, अरे ऐसे बाल, ऐसे बाल, ऐसे फोटो, ऐसे बाल करके फोटो निकालेंगे, लेकिन आपको मालूम है ये तो नकली बाल है, इसमें क्या गर्व करना है? कल जाके मिलेंगे तो टक्कल, आज फोटो निकाले जा रहे हैं, मैगजीन में छप रहे हैं। तो ये जो पता है जिसको, ये सभी भूल भुलैया है, इस पर गर्व करने का काम ही नहीं है। ये इसको जिसको ज्ञान हो गया ना वो विरक्त होगा, लेकिन ऐसे विरक्ति करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति केवल प्रेम से होती है और भक्ति से होती है। आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति में और मुक्ति में अंतर है। मुक्ति तो केवल जन्म मृत्यु के श्रृंखला से फ्री होना है, लेकिन जाना किधर है उसके बाद? अरे ट्रेन से उतर गया भाई, किधर जाना है? आप बोले ट्रेन से उतरना सबसे बड़ी बात है, ट्रेन से उतर गया मैं, वाह। लेकिन अभी राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, घर जाना है कि गांव में जाना है कि स्कूल जाना है, मालूम होना चाहिए ना आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो लोग तो उतरने में अपना सब कुछ पाप तो कर लिया ऐसे बोल लेते, समझ लेते, लेकिन भक्त लोग जानते हैं रियल यात्रा तो वहाँ से शुरू होती है। उतरने के बाद जाना किधर है? ट्रेन से तो उतर गए आप, छूट गए ट्रेन के चक्कर से। तो विरक्ति एक साधन हो सकता है भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए, लेकिन विरक्ति अपने आप में भगवान की प्राप्ति कराने के लिए समर्थ नहीं है। विरक्ति एक सीढ़ी हो सकती है जिस पर आप चढ़ के भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सीढ़ी भगवान नहीं है। धन भी आपको बहुत कुछ कर सकता है भगवान की भक्ति में, लेकिन धन भगवान की प्राप्ति नहीं है। धन को प्राप्त करना, धन का इस्तेमाल करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान का इस्तेमाल करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, विरक्ति का उपयोग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वो तो माया, वो तो केवल ब्रह्म ज्योति में जाएंगे ना सब लोग, वहाँ से वापस गिर जाएंगे। भगवान ने लिखा है ना, कई जगह लिखा हुआ है कि वो लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, संतुष्ट नहीं होते हैं, वापस आकर फिर यहाँ पर हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसा लिखा है। मतलब फिलंथ्रोफी करते हैं, यहाँ पर आके समाज सेवा करते हैं, उनको सेवा के बिना तृप्ति नहीं मिलती ना, तो फिर क्या करना है? फिर अमीरों क्या बोलते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं इधर उधर, समाओ एंगेजमेंट चाहिए ना उनको इंद्रियों के लिए, वो तृप्ति नहीं होती उनकी, तो वी आर वेस्ट ऑफ लेबर है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सौंदर्य होगा तो कैसे भगवान की सेवा करेंगे बताओ? बहुत सुंदर है कोई व्यक्ति, बहुत अट्रैक्टिव है, लोग उसको देख के ही पागल हो जाते हैं, उसको वो कैसे यूज करेंगे भगवान की सेवा में? वो एक हो गया, और हाँ ठीक है, राधा बन सकते हैं या कोई लक्ष्मी बन सकते हैं, हाँ, लेकिन वो अगर वो सेवा में भाव, सेवा भाव से कर रहे तो नहीं आएगा। समझो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, अगर फेमस हो सौंदर्य के लिए, तो लोग आपको मिलने आएंगे तो आप उनको प्रचार कर सकते हो, वो कह रहे हैं ये तो कोई इतनी बड़ी हीरोइन हीरोइन मुझे बता रही है भगवान के लिए, तो आप उसे सुनेंगे क्योंकि आपको उसका आकर्षण है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो कोई डॉक्टर है बहुत बहुत फेमस डॉक्टर है, उसको मिलना भी मुश्किल है, और वो आपको मिला और उसने बोला कि ये लो माला लो, जब करो इतना बड़ा डॉक्टर ने माला दिया, तो अपने पद का इस्तेमाल किया उसने, पद का उपयोग करके उनको आकर्षित किया। कोई मफतलाल है, उसके घर में जाना क्या, दूर से घर देखना, फोटो देखना भी मुमकिन नहीं है। उसके घर में आपको अगर कोई प्रोग्राम के लिए बुलाया और वो आपको पर्सनली आके मिला, बोला ये लो जीवन में भगवान का नाम का जप करो, तो आप बोले मुझे मफतलाल ने माला दिया, तो उसने अपने पद का इस्तेमाल किया कि नहीं आपको लाने में, तो वैसे कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज़ भगवान के सेवा में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ से चीज़ में ही भगवान की प्राप्ति नहीं है, उसका उपयोग करना पड़ेगा, युक्त वैराग्य करना पड़ेगा आपको। और ना बहुत मुश्किल है, मतलब ये ना धन धन ऐसे वस्तु है ना, वो रख के फीलिंगली, ऐसा लिखा वर्ड है फीलिंगली, दिल से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। पैसा ना वो दिमाग में घुस जाता है आदमी के, और आदमी भक्त होने पर भी बहुत अमीर होगा ना, थोड़ा सा पागल जैसा व्यवहार करता है उसका पैसे का प्रभाव से। जब तक सारा आपका पैसा भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, तो वो पैसा जितना नहीं लगा हुआ है वो आपके दिमाग को करप्ट करता है, भ्रष्ट करता है दिमाग के। आप किसी भी अपमान करोगे, कुछ भी बोल दोगे, और जिनका पैसा निश्चित रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उनका दिमाग भ्रष्ट नहीं होता है। तो एक कला है बड़ी, वो अपने पावर को, पोजीशन को भगवान की सेवा में लगाए रखना हमेशा, और खुद अलिप्त रहना उससे, प्रभावित नहीं होना उससे, ये भी एक कला है, लेकिन वो केवल संत की कृपा से हो सकता है, केवल संत की कृपा से ही हो सकता है। जैसे रणछोड़दास महाराज जी होते ना, वो अरविंद मफतलाल को मिले और कृपा किया उनके ऊपर, तो सारा दौलत उन्होंने गुरु जी की सेवा में लगा दिया, इसलिए वो खुद भी एक संत जैसे बने। अरविंद मफतलाल जी, संत की कृपा जब होती है ना तब ये सब सिद्ध हो सकता है। सब कुछ होने पर भी आप नम्र रह सकते हो। उनके गुरु ना 457 ईयर्स जिए। झांसी की रानी को भी देखा है उन्होंने, 457 ईयर्स जिए वो। बहुत चीज़ें इतिहास की बताते थे कि मैं मिला था उनसे वगैरह, अचानक ऐसे बोल देते थे लोग, ऐसे एकदम अरे ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे बोलते थे लोग उनको। तो वैसे संत की उन पर कृपा हुई, तो सारा धन जो ऐश्वर्य था उनका वो भगवान की सेवा में लग गया, पवित्र हो गए वो। और नहीं लगा होता तो वही चीज़ उनके दिमाग को ख़राब करती थी। हाँ उनके संस्कार है उनके ऊपर ना, तो आने वाली पीढ़ी भी कर रही है, उसके और पीढ़ी भी करेगी आगे जाके। संत की कृपा बहुत विचित्र होती है, भगवान के द्वारा बनाए गए नियम भी संत की कृपा तोड़ सकती है। समझ में आपका है? नियम क्या बोलता है, धन आया तो करप्ट हो जाओगे आप, ऐश्वर्य आया तो करप्ट हो जाओगे, संत की कृपा होगी तो वो नियम फेल हो जाता है उधर, और धन आने पर भी वो करप्ट नहीं होगा। संत की कृपा जो है ना वो बड़ी अद्भुत होती है। जैसे वो होता है ना नल कुबेर मणिग्रीव, बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे थे वो, है ना, एक संत ही उनको उतार सकता है। देख रहे इतने इतने बड़े बाप के बेटे, इतना धन है इनका, ऐश्वर्य, इतना पद है, इतना पोजीशन है, इतना सारा चीज़ कर सकते हैं ये लोग, और शराब के नशे में नंगा नाच कर रहे हैं, नंगे औरतों के साथ में गंगा की नदी में क्या कर रहे हैं, कैसा उद्धार होगा इनका। तो भगवान को फोन नहीं किया उन्होंने, शाप दो क्या उनको, शाप ही दे दिया तुरंत उनको। लेकिन एक्चुअली शाप नहीं दिया, वरदान दिया उनको, शाप दिखाई पड़ रहा है उधर कि पेड़ बना दिया उनको, लेकिन ऐसा पेड़ बना दिया कि भगवान के आंगन में जो किसी को दिखता नहीं, वो लीला दर्शन किया उन्होंने, और भगवान का दर्शन भी किया उसके बाद में, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन किया, और भगवान ने उनको वापस देवता बना के भेज दिया अपने देवता लोक में, लेकिन प्रेमा भक्ति दे दिया उनके हृदय में। अभी वो साधारण देवता नहीं रहे बने उसके बाद में, देवता लोक में वापस चले गए वो कुबेर लोक में, लेकिन प्रेमा भक्ति भगवान की स्वीकार करके कुबेर लोक में चले गए। तथा प्रेमा भक्ति स्वकाम में प्रयत्न। तो भगवान का थोड़ी बीच में हाथ था उसके अंदर, नारद मुनि ने अपने ही स्वयं श्राप दे दिया उनको। तो भगवान ने उनकी बात को रिस्पेक्ट करके वैसे ही किया जैसे नारद मुनि के मन में था, भगवान ने साधु ने जो बोला वो सब फॉलो किया भगवान ने, कि हाँ तुम्हारा उद्धार होगा, जब द्वापर के अंत में भगवान आएंगे तो आपको दर्शन देंगे, तब आप बच जाओगे। अब एक तरह से भगवान के लिए प्लान दिया उन्होंने ना, कि मैं अभी श्राप दे रहा हूँ इनको, ये अभी पेड़ बनेंगे, आपको फिर अपने आंगन में उनको रखना है और दर्शन देना है उनको पूरा। तो भगवान ने संत के द्वारा ऑन द स्पॉट दिए गए शाप को वरदान में रूपांतर कर दिया उसका, संत ही कर सकता है। घर के संहिता में पूरी लिस्ट है उनकी, सब राक्षसों की, हर एक राक्षस को किसी संत ने शाप दिया है और भगवान के हाथ से मृत्यु का वरदान दिया है उसको, और हर एक राक्षस का उद्धार हो गया है। कहाँ कहाँ से कौन सुंदर राक्षस था, साहसिक, वो बकासुर बन गया, वो कुछ और सुंदर था, वो जाजली बन, क्या 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 बने, कोई पुतना बनी, कोई बकासुर बना, कोई अगासुर बना, किसी ने अष्टावक्र का निंदा किया, हंसा उसके ऊपर तो वो अगासुर बन गया, है ना। लास्ट कंटिन्यू हो जाएगा ऑन द सेम थिंग, वो जो वहीं से चालू हो जाएगा, लेकिन नए कंडीशन में यही तो भक्ति का बढ़िया चीज है ना, भक्ति और भौतिक दुनिया में अंतर क्या है?
वो एक सर्टेन एज पे होगा कि वो जैसे मेरा बर्थ होगा वही।
नहीं सुनो सुनो, अभी आपने 75% किया और मौत हो गई, ठीक है, पूरा नहीं हुआ काम, तो अगले जन्म में जहाँ पे आप जाओगे वहाँ 75 से चलो करोगे, आप 0 से चालू नहीं करोगे। और भौतिक दुनिया में क्या करोगे, MBBS रहोगे, MBBS करके मौत हो जाएगी, वापस KG में जाना पड़ेगा आपको। तो भौतिकता में वो कंटिन्यू नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी में वो कंटिन्यू होता है। वो भी कर्मों का हिसाब है सब। आपको भक्ति में भगवान को शुद्ध करना है तो आपको अभक्त बच्चे देंगे और भगवान तड़पाएंगे आपको और आपका प्यूरिफाई करेंगे आपको। तो जरूरी आपके लिए है, आपके प्योरिफिकेशन के लिए वो भगवान देंगे आप। जैसा आप सोचते वैसा नहीं, जैसा वो सोचते हैं आपके लिए अच्छा है वैसा देंगे। आप बोलेंगे अरे मैं तो डिवोटी का शादी किया तो बच्चा डिवोटी होना चाहिए ना, मैं तो राक्षस निकला बच्चा मेरा। अभी उग्रसेन डिवोटी था, कंस उसका लड़का निकला कि नहीं, विश्वरूपा ब्राह्मण था बहुत श्रेष्ठ, रावण बच्चा हो गया उसको, तो क्या करेंगे उसको? तो कर्मों का खेल है सब, लेकिन शुरू आपसे वहीं करेंगे, 75% से करेंगे। इसका क्या मालूम है फॉर्मूला है, जो जो आपने आत्मा के स्तर पे अचीव किया है वो आपके आत्मा के साथ जाएगा। अगर 75% आत्मा के स्तर पे एडवांसमेंट किया है तो जहाँ आत्मा जाएगी आत्मा के साथ चला जाएगा वो, आत्मा अमर है। तो जो आपने उसके लेवल पे अचीव किया है जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पर, अगर आपने पिंक ड्रेस पहना है, अगर आपको यहाँ से बुरली जाना है तो ड्रेस भी आपके साथ में जाएगा। हर समय होता है फॉल डाउन, अगले जन्म में क्यों, अभी भी है। अगले जन्म में क्यों बात कर रहे हैं आप, अभी भी आप जहां पर हो वहां से फॉल डाउन हो सकते हो। लेकिन नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भया। जो भी आपने स्पिरिचुअल लाइफ में किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा। टेम्परेली फॉल डाउन होगा लेकिन आपके अकाउंट में जितना है उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। अभी आप गिर जाओगे और नुकसान सहन करोगे लेकिन आपके पूंजी में कितना आपने डाला था वो कभी भी नश्वर नहीं है, वो नष्ट नहीं होगा काल के प्रभाव से। काल के प्रभाव से क्या नष्ट होता है, जो भी आपने शरीर के स्तर पर अचीव किया है वो सब काल के प्रभाव से नष्ट होता है, और वो शरीर भी जिसके ऊपर आपने इतना सब अचीवमेंट किया है वो शरीर भी नष्ट हो जाता है, इसलिए वो कहीं का नहीं रहता। जैसे श्रीनाथ प्रभु अभी गुजर गए लेकिन उनका दौलत सब इधर ही रहेगा ना, वो कर्मों के हिसाब से जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर और दौलत मिलेगी उनको, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने अचीवमेंट किया था वो वेल्थ का, वो सब यहीं छोड़ के बच्चों को बांट के उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो दौलत जो है वो शरीर के स्तर पे होती है, ऐश्वर्य घर दौलत यहाँ पर जमीन जमला बंगला जो भी कुछ है प्रेस्टीज, आपका डॉक्टर देसाई के नाम के प्रेस्टीज था, वो सब कुछ उनको यहीं छोड़ के आत्मा गया उनका, आत्मा के साथ जितना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट था वो गया उनके साथ में, और वो आपके उनको अगली गति देगा, जहाँ पर भी घर जन्म जहाँ होगा वहाँ पर उनका होगा वो। और पतित होने की क्या डेंजर इधर भी था और पतित आगे के जन्म में भी हो सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। वो अच्छे घर में जाएंगे बड़े दौलत के साथ, यहाँ से अधिक दौलत मिलेगी तो दौलत में फंस जाएंगे या नहीं फंसेंगे वो आपके हाथ में है। वो दौलत पर गर्व करेंगे और मस्ती पैदा करेंगे तो वो भी आपके हाथ में, और दौलत को सब भगवान की सेवा में यूज करेंगे। सुदामा कैसे था, सुदामा ना एकदम ऐसा ना भूख के मारे कांपता था, ऐसे इतना गरीब था वो, दौलत तो छोड़ ही दो खाना भी नहीं उसके लिए। और जब वापस लौट के आया तो बड़ा महल में सोने चांदी से भरा हुआ, पत्नी दागिन से लदी हुई, हस्तिदंत के फर्नीचर और गोदाम भरे हुए खाने के, और क्या बताएं पंच पकवान दास दासियां सब, ऐसा महल था उसका। लेकिन सुदामा उसमें एक क्षण के लिए भी लिप्त नहीं हुआ, उससे बाहर नहीं गया वो, उधर ही रहा वो, लेकिन उसको वो धन दौलत का एक हिस्सा भी उसको टच नहीं किया, उस आत्मा को उसको भ्रष्ट नहीं किया उसने। सुदामा का चॉइस था, अरे यार इतना दिन के बाद में खाना मिल रहा है, इतना ऐश करो यार, क्या अभी इतना तकलीफ क्या उठाया मैंने, भगवान ने अपने आप ही, मैं तो मांग रहा तो था ही नहीं, भगवान ने अपने आप ही दिया है, तो भगवान चाहते हैं मुझे कि मैं उसका भोग ले लूं, तो क्या खराब है उसके अंदर, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन बोला मुझे नहीं जाना है इसके अंदर, नहीं भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर ना, कर्म के परे है ना वो कृपा, तो भगवान की कृपा की वजह से वो कफल्लक आदमी था वो इतना धनी हो गया, लेकिन उसने उस धन में अपना दिल नहीं लगाया, वो वैसा ही रहा जैसे पहले था, भूखा नहीं रहा, खाना खाया उसने, लेकिन वो धन से आसक्त नहीं हुआ कि ये महल मेरा, ये फर्नीचर मेरा, ये घर मेरा। पांडव भी ऐसे ही थे, उनको राज्य में दरबार में अधिकार में प्रभाव में किसी में रुचि नहीं थी, उनका केवल भगवान में रुचि थी। जब वो भिखारी थे पैदल चल रहे थे जंगल में तभी भी, और राजा बनने के बाद भी, दिस इज द प्रूफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।